ये आकाशवाणी है, अब आप वैष्णवी से समाचार सुनिए। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर सहमति बन गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि दोनों देश 2020 में नियंत्रण रेखा पर जहां थे वहीं वापस आ गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच विस्तृत चर्चा के बाद यह सहमति बनी है। रूस की सेना में लड़ रहे भारतीयों की वापसी के मुद्दे पर विदेश सचिव ने कहा कि 85 भारतीय स्वदेश लौट आए हैं और 20 लोग अभी भी वहीं हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में उच्चतम स्तर पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज रूस रवाना होंगे। श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर जा रहे हैं। सम्मेलन का विषय न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सशक्त करना है। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कजान में आकाशवाणी संवाददाता से कहा है कि ये शिखर सम्मेलन नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। ये ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का भी आकलन करेगा। श्री कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के बारे में नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से सभी गतिविधियों में शामिल हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आज 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, जल उपयोगकर्ता संघ और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज सहित 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा को मिला है, उत्तर प्रदेश को द्वितीय और गुजरात तथा पुदुचेरी को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान मिला है। सरकार उड़ान योजना को अगले 10 वर्षों तक जारी रखने की योजना बना रही है। उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि 50 और हवाई अड्डे शुरू करने के साथ ही वर्तमान हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने की भी योजना है। श्री नायडू ने कहा है कि सरकार विमान परिचालन को प्रभावित करने वाली फर्जी कॉल से संबंधी समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सुरक्षा और सतर्कता तंत्र को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार फर्जी कॉल को संज्ञेय अपराध बनाने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने इस महीने 1,000 करोड़ रुपए की बिक्री करके उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि लोगों के सस्ते और गुणवत्तापूर्ण दवाओं पर बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्ष 2014 तक केवल 80 जन औषधि केंद्र थे, जो इस वर्ष बढ़कर 14,000 से अधिक हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद जूनियर डॉक्टरों ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है। मुख्यमंत्री ने कल राज्य सचिवालय नबन्ना में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में आरजीकर मेडिकल कॉलेज घटना की पीड़िता को न्याय दिलाने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कल 31 अक्टूबर से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत ए टीम की घोषणा कर दी है। भारत ए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैकेई और मेलबर्न में 2 प्रथम श्रेणी मैच खेलेगा और फिर पर्थ में सीनियर भारतीय पुरुष टीम के खिलाफ 3 दिवसीय इंट्रा स्क्वाड गेम में हिस्सा लेगा। भारत अगले वर्ष फरवरी में चेन्नई से शुरू होने वाले 4 एटीपी टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। चेन्नई के बाद अगले 3 टूर्नामेंट 10 फरवरी से 2 मार्च तक बेंगलुरु, पुणे और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।